अध्याय 12 पृथ्वी पर की कलीसिया। पृथ्वी पर परमेश्वर की एक कलीसिया है जो उसके चुने हुए लोग हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। वह एक मानव समुदाय का नेतृत्व कर रही है, न कि भटके हुए दलों न इक्के दुक्कों का। सत्य तो पवित्र करने वाली शक्ति है, परंतु युद्धरत कलीसिया जयवंत नहीं है। गेहूं के बीच जंगली दाने भी हैं। दास ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, ऐसा नहीं ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। मत्ती 13 आयत 28-29। इंजील का जाल न केवल अच्छी मछलियों को पकड़ लाता है, किंतु बुरी बालियों को भी, और केवल परमेश्वर ही अपनों को पहचानता है। हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य है कि परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। हमें कोई अनोखा नया संदेश नहीं ढूंढना चाहिए। हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर के चुने हुए भक्त जो प्रकाश में चलने की कोशिश कर रहे हैं बाबेल से संबंधित हैं। यद्यपि कलीसिया में बुराइयां उपस्थित हैं और जगत के अंत तक रहेगी, तो भी कलीसिया को इन अंतिम दिनों में पाप से अपवित्र तथा भ्रष्ट हुए जगत का प्रकाश होना चाहिए। कलीसिया बलहीन और दूषित तो है, जिसको घुड़की, चेतावनी, परामर्श की आवश्यकता है। तिस पर भी पृथ्वी पर वह एकमात्र वस्तु है जिसका मसीह बड़ा आदर करता है। संसार एक कारखाना है जिसमें मानव और ईश्वरीय साधनों के सहयोग द्वारा यीशु अपने अनुग्रह और करुणा का मनुष्य के हृदय पर प्रयोग कर रहा है। परमेश्वर के एक पृथक लोग हैं, अर्थात पृथ्वी पर एक अद्वितीय कलीसिया है, परंतु सत्य को सिखलाने की सुविधाओं में और परमेश्वर की व्यवस्था को सच्चा ठहराने में सबसे श्रेष्ठ है। परमेश्वर के कुछ नियुक्त साधन हैं, अर्थात ऐसे लोग जिनका वह पथ प्रदर्शन कर रहा है, जिन्होंने सारी कठिनाइयों को झेला है, अथवा दिन की गर्मी व सर्दी का सहन किया है, जो स्वर्गीय कार्यकर्ताओं के संग इस संसार से मसीह के राज्य को फैलाने में सहयोग दे रहे हैं। इन चुने हुए कार्यकर्ताओं के संग सारे लोग मिल जाएं और अंत में पाए जाएं, जिनमें पवित्र जनों का धीरज है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं और यीशु के विश्वास का पालन करते हैं। पार्थिव कलीसिया का स्वर्गीय कलीसिया से संयोग। परमेश्वर की पृथ्वी पर की कलीसिया स्वर्गीय कलीसिया के साथ ऐक्य रखती है। पृथ्वी पर के विश्वासी और स्वर्गीय प्राणी जो पाप में नहीं गिरे एक ही कलीसिया का निर्माण करते हैं। प्रत्येक स्वर्गीय प्राणी पवित्र जनों की सभा में, जो पृथ्वी पर परमेश्वर की उपासना के लिए एकत्र होते हैं, दिलचस्पी लेता। स्वर्गीय न्यायालय के भीतरी भाग में वे पृथ्वी के बाहरी भाग में दी गई मसीह के साक्षियों की साक्षी को सुनते हैं, और पृथ्वी के उपासकों की स्तुति तथा धन्यवाद स्वर्गीय गीत में परिणत किया जाता है, और स्तुति तथा आनंद की लय स्वर्गीय आंगनों में गूंजती है, क्योंकि आदम की पतित संतान के लिए मसीह की मृत्यु अकारथ नहीं गई। जब स्वर्गीय दूत चश्मे के स्रोत से जल पीते हैं, तो पृथ्वी पर पवित्र लोग सिंहासन से बहती पवित्र धार में से पीते हैं, उस धार में से जो परमेश्वर के नगर आमोद प्रमोद से भर देती है। आह, अच्छा होता कि हम सब महसूस कर सकते कि स्वर्ग पृथ्वी के कितना निकट आ गया है। जबकि पार्थिव संतान को मालूम भी नहीं, तो उनके साथ ही दीप्तिमान दूत हैं। एक मौन साक्षी प्रत्येक प्राणी की रक्षा करता है और उसे मसीह की ओर खींचता है। जब तक आस है, जब तक पवित्र आत्मा का सामना नहीं किया जाता, जिससे उनको हमेशा की हानि होती है, तब तक स्वर्गीय प्राणी उनकी रक्षा करते रहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि पवित्र लोगों के प्रत्येक सम्मेलन में परमेश्वर के दूत उपस्थित होते हैं और साक्षियों, गीतों तथा प्रार्थनाओं को सुनते रहते हैं। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हमारी स्तुतियों की त्रुटियों की पूर्ति स्वर्गीय दूतगणों की गायन मंडली द्वारा की जाती है। फिर जब सब्बत ब सब्बत एकत्र होते, उसके नाम की स्तुति करते, जिसने आपको अंधकार में से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, जिसने हमें प्यार कर अपने लोहू में हमारे पापों को धो डाला, उसकी हृदय से उपासना हो। व्याख्यानदाता के संदेश का भार मसीह का प्रेम हो। प्रत्येक स्तुति के गायन को साधारण भाषा में उसका वर्णन हो। परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से प्रार्थनाएं प्रेरित हों। जब जीवन के वचन का प्रचार किया जा रहा है, तो आपकी हार्दिक साक्षी ये हो कि आप उस स्वर्गीय संदेश को स्वीकार करते हैं।
परमेश्वर शिक्षा देता है कि हमें उसके घर में एकत्र होना चाहिए, कि पूरे प्यार के सद्गुणों का पालन पोषण करें। ऐसा करने से पृथ्वी के निवासी उन मकानों में रहने योग्य होंगे जिन्हें मसीह अपने प्यार करने वालों के लिए तैयार करने गया है। वहां पर वे मंदिर में हर सब्बत को और हर नए चांद को माने और उसकी स्तुति और धन्यवाद में ऊंचे स्वर से गीतों को उठाने को एकत्र होंगे जो सिंहासन पर बैठा है। अधिकार जिनसे कलीसिया विभूषित की गई। मसीह कलीसिया की आवाज को शक्ति देता है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। मत्ती 18 आयत 18। यदि कोई मनुष्य अपनी ही व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर काम शुरू करे और अपने ही विचारों का जिन्हें वो पसंद करे प्रचार करे और कलीसिया के निर्णय को परवाह न करे, तो ऐसी वस्तु को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। परमेश्वर ने स्वर्ग के बीच अपनी कलीसिया को उच्च अधिकार प्रदान किया है। कलीसिया के हैसियत से उसके संगठित लोगों में जब परमेश्वर की वाणी सुनाई देती है तो उसका समुचित सम्मान होना चाहिए। परमेश्वर का वचन किसी भी एक व्यक्ति को अपने निर्णय की कलीसिया के प्रतिरोध में स्थापित करने की आज्ञा नहीं देता, नन उसको इस बात की आज्ञा ही कि अपनी सम्मति को कलीसिया की सम्मति के विरुद्ध उसकावे। यदि कलीसिया में नियम व शासन न हो तो उसमें फूट पड़ जाएगी, वह संगठित होकर एक अंग नहीं रह सकती। ऐसे भी लोग हुए हैं जिनके विचार स्वतंत्र रहे, जो दावा करते थे कि उनका कथन सत्य था, कि उन्हें परमेश्वर ने सिखाया, प्रभावित किया और मार्गदर्शन भी उसके विचार परमेश्वर के वचन के अनुकूल है। प्रत्येक का सिद्धांत और विश्वास भिन्न भिन्न है, फिर भी वो दावा करता है कि उसको परमेश्वर से विशेष प्रकाश प्राप्त हुआ है। ये उस अंग से पृथक हो जाते हैं और प्रत्येक स्वयं एक मंडली बन जाता है। ये सब के सब सत्य पर नहीं हो सकते, फिर भी वे दावा करते हैं कि परमेश्वर हमारी नेतृत्व कर रहा है। हमारा सृष्टिकर्ता आदेश संबंधी पाठों के साथ प्रतिज्ञा भी करता है कि यदि दो या तीन मिलकर परमेश्वर से किसी वस्तु को मांगे तो वो उनको दी जाएगी। यहां पर मसीह दिखलाता है कि दूसरों के साथ किसी दी हुई वस्तु के लिए हमारी इच्छाओं में भी ऐक्य होना जरूरी है। संयुक्त प्रार्थना में अभिप्राय के ऐक्य के साथ बड़ा महत्व सम्मिलित है। परमेश्वर व्यक्तियों की प्रार्थना सुनता है, पर इस अवसर पर यीशु को विशेष और महत्वपूर्ण पाठ दिए गए जिनका उसकी पृथ्वी पर की नव संगठित कलीसिया से विशेष संबंध होने को था। जिन बातों की वे इच्छा करें तथा जिनके लिए वे प्रार्थना करें उनमें मेल होना चाहिए। केवल एक ही मन के विचार तथा कार्य नहीं होने चाहिए जिसका परिणाम धोखा हो सकता है, परंतु वो प्रार्थना कई मनों की उत्साहपूर्ण इच्छा हो जो एक ही विचार पर केंद्रित हों। कलीसिया मनुष्यों के उद्धार के हेतु एक नियुक्त साधन है। वो सेवा कार्य के निमित्त व्यवस्थित की गई और उसका ध्येय जगत को सुसमाचार पहुंचाना है। आदि से परमेश्वर की यही योजना रही है कि उसकी कलीसिया द्वारा उसकी भरपूरी और समृद्धशाली का प्रतिबिंब संसार पर पड़े। कलीसिया के सदस्यों को, जिन्हें उसने अंधियारे से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसकी महिमा को प्रकट करना चाहिए। कलीसिया मसीह के अनुग्रह की धन संपत्ति का भंडार है और कलीसिया ही के द्वारा अंत में आकाश में के प्रधानों और अधिकारियों पर परमेश्वर के प्यार का अंतिम व पूर्ण प्रदर्शन प्रकट किया जाएगा। निदेशार्थ पौलुस का कलीसिया के पास भेजा जाना।
कितने लोगों का विचार है कि प्रकाश व अनुभव जो उन्हें प्राप्त हुआ है उसके लिए वे सीधे मसीह के प्रति उत्तरदायी हैं और संसार में उसके स्वीकृत शिष्यों से कोई संबंध नहीं रखते, परंतु मसीह ने इसका अपनी शिक्षाओं, उपदेशों तथा उदाहरणों द्वारा खंडन किया है। ये तथ्य उसने हमारी शिक्षा के लिए दिए हैं। यहां पर पौलुस है जिसे मसीह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए योग्य बना रहा है। जिसे उसके लिए एक चुना हुआ पात्र बनना था वह सीधे मसीह के सन्मुख लाया गया, फिर भी सत्य के पाठ वो स्वयं उसको नहीं सिखलाता, उसके रास्ते में हस्तक्षेप करता है और उसको दोषी ठहराता है। और जब पौलुस प्रश्न पूछता है, तू क्या चाहता है कि मैं करूं,
सृष्टिकर्ता उसको प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देता है, परंतु उसको अपनी कलीसिया के संसर्ग में लाता है। वे ही बतलाएंगे कि तुझे क्या करना है। यीशु पापियों का मित्र है, उसका हृदय सर्वदा खुला है, सर्वदा मानव दुख से स्पर्शित होता है। उसको स्वर्ग में और पृथ्वी में पूर्ण अधिकार है, परंतु वह उन साधनों का आदर करता है जो उसने मनुष्यों के ज्ञान व प्राण के लिए नियुक्त किए हैं। वह शावल को कलीसिया के पास भेजता है, यों वह उस अधिकार को स्वीकार करता है जो उसने कलीसिया को जगत को प्रकाशित करने का साधन बनने के नाते प्रदान किया है। पृथ्वी पर वह कलीसिया मसीह का सुव्यवस्थित संप्रदाय है और उसकी संस्था का यथोचित सम्मान होना चाहिए। शावल के मामले में अन्या मसीह का प्रतिनिधित्व करता है। वह मसीह के पृथ्वी पर के सारे अध्यक्षों का भी, जो मसीह के स्थान पर नियुक्त किए जाते हैं, प्रतिनिधित्व करता है। पौलुस के हृदय परिवर्तन में महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं जिन्हें हमको सदैव ध्यान में रखना चाहिए। जगत का सृष्टिकर्ता अपनी सुव्यवस्थित तथा स्वीकृत कलीसिया की संपत्ति के बाहर धार्मिक मामलों में किसी व्यक्तिगत अनुभव और व्यवहार की आज्ञा नहीं देता। परमेश्वर के पुत्र ने अपनी संगठित कलीसिया के पद तथा अधिकार के संग अपने को सम्मिलित कर दिया था। उसकी आशीषें उन्हीं साधनों द्वारा प्राप्त होंगी जिन्हें उसने नियुक्त किया है। यो वह मनुष्य को उसी चश्मे से संबंधित करता है जिससे आशीषम बहती हैं। पौलुस पवित्र लोगों को अंतकरण के अनुसार सताने के कार्य में व्यस्त था, पर जब परमेश्वर की आत्मा ने उसको उसके निर्दयी कार्य से ज्ञान कराया तो वह निर्दोष नहीं छूटा। उसको शिष्यों से शिक्षा लेना था। कलीसिया के सारे सदस्यों को, यदि वे परमेश्वर के पुत्र व पुत्रियां हैं, तो जगत में उजाला बनने से पूर्व अनुशासनाधीन चलना होगा। परमेश्वर पुरुषों व स्त्रियों को प्रकाश का साधन कदापि न बनाएगा जब वे स्वयं अंधियारे में हैं और उसी में रहने को संतुष्ट हैं। प्रकाश के स्रोत से संपर्क रखने का कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते। जो अपनी आवश्यकता को महसूस करते हैं और अपने को गहन विचार, उत्साह, धैर्यपूर्ण प्रार्थना और कार्य की ओर जागृत रखते हैं, वे ही ईश्वरीय सहायता प्राप्त करेंगे। अपने में बहुत कुछ दूर करना होगा और बहुत कुछ सीखना भी होगा। पुरानी आदतें और प्रथाएं त्यागनी होंगी और इन गलतियों को सुधारने के हेतु केवल कड़े संघर्ष द्वारा तथा सत्य को पूर्ण रूप से ग्रहण करने द्वारा कि उसके सिद्धांतों का ईश्वरीय कृपा से पालन करके विजय प्राप्त हो सकती है। गलती फैलाने वालों को परामर्श। जो लोग अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर संदेश फैलाते हैं और जो दावा करते हैं कि परमेश्वर उनको शिक्षा दे रहा तथा नेतृत्व कर रहा है, फिर भी वे अपना विशेष कर्तव्य समझते हैं कि उस कार्य को नष्ट करें जिसे परमेश्वर बरसों से बना रहा है। ऐसे लोग परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं। ज्ञात हो कि ये लोग उस बड़े धोखेबाज के पक्ष में हैं। उनका विश्वास न करना, जो धन संपत्ति तथा योग्यता के भंडारी बनाए गए हैं। आप अपने प्रभु की संपत्ति का गलती फैलाने में अनुचित उपयोग कर रहे हैं। सारी दुनिया परमेश्वर की व्यवस्था के यथोचित दावों के प्रचार करने वालों के विरुद्ध द्वेष से भरी है। अतः यहोवा की स्वामी भक्त कलीसिया को जटिल संघर्ष में रत होना अवश्य है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इफिसियों 6:12। जो कोई कुछ महसूसियत रखता है कि इस युद्ध का क्या अर्थ है, वे अपने हथियार युद्धरत कलीसिया के विरुद्ध ना उठाएंगे, परंतु परमेश्वर के लोगों का साथ देकर जी तोड़कर दुष्टात्मा के षड्यंत्र के विरुद्ध युद्ध करेंगे।